ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष से समाचार सुनिए। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्ताव प्रभावी हो गए हैं और बजट प्रक्रिया पूरी हो गई है। लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि मोदी सरकार का उद्देश्य कर ढांचे को सरल बनाने के साथ ही देश में विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले एक दशक में कर ढांचे में बड़े बदलाव किए हैं। उन्होंने बताया कि करों में बढ़ोतरी किए बिना सरकार अधिक पारदर्शिता के साथ नियमों के अनुपालन को आसान बनाते हुए एक सरल कराधान व्यवस्था लेकर आई है। मध्यम वर्ग पर टैक्स के बोझ के विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2023 में व्यक्तिगत आयकर के स्लैब को काफी उदार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी करदाताओं की कर देनदारी 37,500 रूपये कम हो गई है और इसका मध्यम वर्ग को फायदा होगा। राज्यसभा में आज विनियोग विधेयक 2024 और जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पर चर्चा हुई। इन दोनों विधेयकों को लोकसभा पहले ही पारित कर चुकी है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अमीर और गरीब के बीच अंतर कम करना, महंगाई कम करना और बेरोजगारी के मुद्दों का समाधान करना होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने सरकार को स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर लगाए जा रहे 18% जीएसटी को वापस लेने का आग्रह किया। वाईएसआरसीपी के वी विजय साई रेड्डी ने वित्त मंत्री से 1,00,000 रूपये तक की पेंशन को कर छूट के दायरे में लाने का अनुरोध किया। भाजपा के भुवनेश्वर कलिता ने कहा कि बजट में सरकार ने समाज के गरीब वर्गों, युवाओं, किसानों और महिलाओं को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कल चर्चा पर जवाब देंगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय ओलंपिक संघ ने पेरिस ओलंपिक में पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार देने पर विश्व कुश्ती संघ में विरोध दर्ज कराया है। श्री मांडविया ने आज लोकसभा में कहा कि सरकार विनेश को सभी प्रकार की सहायता प्रदान कर रही है। डॉ मांडविया ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ ने इसी बारे में सभी संभावनाएं तलाशने को कहा गया है। विनेश 50 किलो के फाइनल में पहुंची थी और उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम अधिक पाया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी ऊषा ने कहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ ने अयोग्यता के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए विश्व कुश्ती संघ में अपील दायर की है। उन्होंने कहा कि सरकार विनेश को सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने विनेश फोगाट को अयोग्य ठहराए जाने पर दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि निराशा की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पहलवान विनेश फोगाट चैंपियनों में चैंपियन है और भारत का गौरव है जो हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निर्वाचन आयोग ने 9 राज्यों की रिक्त 12 राज्यसभा सीटों के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। अधिसूचना 14 अगस्त को जारी होगी। उम्मीदवार 21 अगस्त तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 22 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 26 और 27 अगस्त है। चुनाव 3 सितंबर को होगा। निर्वाचन आयोग सोमवार और मंगलवार को हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा करेगा। बांग्लादेश में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार कल रात शपथ लेगी। सेना प्रमुख जनरल बकर उस जमान ने कहा है कि करीब 15 लोग अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में शपथ ले सकते हैं। उन्होंने देश में 3-4 दिनों में हालात सामान्य होने की संभावना व्यक्त की। पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में ज्योति याराजी ने 7वां स्थान हासिल करने के बाद रेपेशाज राउंड में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए कल दोपहर रेपेशाज राउंड में वो अपनी चुनौती पेश करेंगी। ज्योति ओलंपिक में इस स्पर्धा में हिस्सा लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। श्रीलंका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 110 रन से हराकर 3 मैच की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम कर ली है। श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 248 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पूरी टीम 26 ओवर और 1 गेंद में 138 रन पर ऑल आउट हो गई। देश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, मध्य तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में इस सप्ताह हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान में अगले 7 दिनों के दौरान तेज बारिश हो सकती है। इस अवधि में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं हल्की या तेज वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।